इप्सिता बोलते बोलते चुप हो गई। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारे और जीजू के बीच कुछ एक्साइटिंग हुआ क्या? इप्सिता नंदिनी को इतना ओवर एक्साइटेड देखकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, पागल हो क्या तुम, हमारे और अभिमन्यु के बीच भला क्या होगा, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोग थे वहाँ पर जो हमें साथ में देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे और कुछ लोग थोड़े शौक भी हो गए, हमारे बारे में बातें भी कर रहे थे और कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी और अभिमन्यु की शादी होने वाली है। इतना बोलकर इप्सिता अवंतिका के बारे में सोचने लगी। नंदिनी ने इप्सिता को इस तरह सोचते देखा, वो समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है वहाँ पार्टी में, लेकिन ईशु शायद बता नहीं रही है। नंदिनी ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, ईशु वैसे तो जिस तरह से सोच सोच कर ये सारी बातें मुझे बता रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शक हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही नंदिनी ने इप्सिता को घूरते हुए ये बात कही, इप्सिता ने अपने मन में कहा, क्या सच में हम ऐसा कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहे हैं जो नंदिनी को हम पर शक हो रहा है? हम भी बिल्कुल ही पागल हैं, अपने इमोशंस छुपा ही नहीं पाते हैं, हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा वरना नंदिनी तो हमें झट से पकड़ लेगी, और अगर उसने बार बार एक ही बात को पूछना शुरू किया तो हम और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, और ऐसे में कहीं हम सच में कुछ बताना दें? इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, हम क्यों भला तुमसे कुछ छिपाएंगे, तुमसे आज तक हमने कुछ छिपाया है क्या जो अब छिपाएंगे? तुम तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे कुछ छिपाना कहाँ हमारे बस में है, हम कोशिश भी करें फिर भी तुमसे कहाँ छिपा पाते हैं, हर बात तो सबसे पहले तुम्हें बता देते हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने नंदिनी को साइड हक कर लिया। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। तभी दरवाजे पर शांता आई और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, बहुरानी सा हम अंदर आ जाएं? उनकी तरफ देखकर इप्सिता बोली, हाँ शांता काकी, आप वहाँ रुक क्यों गई? उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के अलावा नाश्ते का भी काफ़ी सारा सामान था। उन्होंने वो ट्रे टेबल के सामने रखते हुए कहा, बहुरानी सा अगर और कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज़ लगा दीजिएगा। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। शांता उन दोनों को इस तरह बात करते देखकर मुस्कुराई और सीधे कमरे से बाहर चली गई। नंदिनी ने ट्रे में रखे हुए सामान की तरफ देखते हुए कहा, यार ईशु तू तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसे मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि तेरी मेहमान हूँ, इतनी फॉर्मेलिटी कौन अदा करता है, ऊपर से ठीक तरह से कुछ बात भी नहीं हुई, पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं? इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, देख हमें कुछ मत बोल, सब कुछ शांता आंटी लेकर आई हैं, और वैसे भी तुझे तो स्नैक्स इतने पसंद है तो फिर अब नखरी क्यों कर रही है, आराम से खाओ, और पार्टी में सच में ऐसा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ बताने लायक, और जितना कुछ था मैंने बता दिया है तुझे। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है मान ली तेरी बात, बोरिंग सी पार्टी होगी, और हाँ पसंद है लेकिन अभी मैं थोड़ी डाइट पर हूँ क्योंकि मैं तेरी शादी में परफेक्ट दिखना चाहती हूँ, आखिर मुझे भी तो अपने लिए तेरा वो देवर पटाना है, क्या नाम था उसका, अभिमन्यु का दोस्त, हाँ समर्थ, एक बार तो मैं उसे अप्रोच करके देखूंगी, अगर पट गया तो तेरे साथ साथ मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर उसके सिर पर धीरे से मारते हुए बोली, पूरी पागल हो तुम, कुछ भी बोलती हो। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अरे ईशु मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। वो दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि इप्सिता के फोन में मैसेज की रिंगटोन बजी। उसने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा, इप्सिता हैरान होते हुए बोली, ध्रुव का मैसेज? जैसे ही नंदिनी ने इप्सिता के मुंह से ध्रुव का नाम सुना, नंदिनी इप्सिता के फोन में झांकते हुए बोली, ध्रुव कहीं वो तुझे फिर से शूट के लिए तो नहीं बुला रहा? इप्सिता ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं यार अब वो हमें शूट के लिए क्यों बुलाएगा, उसी दिन उसे हम सब कुछ समझा कर आए थे और वैसे भी हमने उसे मना कर दिया था कि ये हमारा लास्ट फोटोशूट है, अब और कोई फोटोशूट नहीं होगा तो वो हमें फोटोशूट के लिए तो नहीं बुलाएगा। नंदिनी ने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, अरे बाबा तो फिर इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हो, ओपन करो उसका मैसेज और देखो क्या है। इप्सिता ने ध्रुव का मैसेज खोला और देखा, उसमें इप्सिता की फोटोशूट वाली फाइनल फोटोज थी जो ध्रुव ने उसे देखने के लिए भेजी थी। इप्सिता और नंदिनी दोनों उसकी वो फोटोज देखकर बिल्कुल हैरान हो गईं। इप्सिता के मुंह से तो एक शब्द ही नहीं निकला। नंदिनी ने इप्सिता को अप्रिशिएट करते हुए कहा, वाह ईशु तेरी ये फोटोज कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हैं, तू सच में बिल्कुल प्रोफेशनल मॉडल की तरह पोज देती है, मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ी और प्रोफेशनल मॉडल भी इतनी अच्छी तरह पोज कर पाती होगी। नंदिनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इप्सिता अपनी फोटोज बहुत ध्यान से देख रही थी। अपने हर एक पोज की तारीफ नंदिनी के मुंह से सुनकर इप्सिता बहुत खुश हुई। तभी ध्रुव का वीडियो कॉल आया और उसने ध्रुव का वीडियो कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, देखी तुमने अपनी पिक्स? नंदिनी ने कहा, हाँ हम लोग वही देख रहे थे। ध्रुव खुश होते हुए बोला, यार तेरी फोटोज ने एक बार फिर से मेरा सिलेक्शन करवा दिया। इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोली, इन फोटोज से तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हें रिजल्ट पता चल गया क्या? ध्रुव ने काफी कॉन्फिडेंस से कहा।
नहीं, रिजल्ट तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन मैं 1000% श्योर हूँ कि ये फोटोज मेरा सिलेक्शन करवा कर ही रहेंगी। जस्ट लुक एट योर पिक्चर्स इशू, इट्स अमेजिंग, यू आर सच अ ग्रेट मॉडल। अगर तुझे तेरे ससुराल वाले मॉडलिंग के लिए कमीशन दे देते हैं तो तू सच में आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बनाएगी। नंदिनी ध्रुव की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली, मैं भी अभी ईशू से यही बोल रही थी। ऐसा लग रहा है ईशू की ये फोटोज देखकर कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग के लिए ही बनी है ना? इप्सिता उन दोनों की बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसने ध्रुव और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन प्लीज अब हम पहले ही जब डिसीजन ले चुकी हैं तो फिर अब तुम लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? छोड़ो ये सारी बातें। ध्रुव इप्सिता को इमोशनल होते देखकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ तुमसे कुछ भी, लेकिन हाँ इशू, एक बात याद रखना, तुम मेरी पहली मॉडल हो और मैं चाहता हूँ कि आगे भी कभी ना कभी मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिले। इसलिए अगर कभी भी तुम्हारा मूड चेंज होता है या फिर कभी भी तुम्हें कोई भी कैसा भी फोटोशूट करवाना हो तो मुझे याद रखना। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, बाय द वे हम प्रे करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे करियर में हमेशा सक्सेस मिले। हमारा सपना तो पूरा नहीं हो सकता, कम से कम तुम्हारा सपना ही पूरा हो जाए। इप्सिता ध्रुव से ये बात बोल ही रही थी कि ध्रुव ने कहा, थैंक यू सो मच, आई विश मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और काम करने को मिलता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर किस्मत में होगा तो हम दोबारा एक साथ काम जरूर करेंगे। इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर मुस्कुराई और इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोली। ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों से बाद में बात करूंगा, बाय। इतना बोलकर ध्रुव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इप्सिता अपनी फोटोज की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। नंदिनी ने इप्सिता को साइड हग करते हुए कहा, डोंट बी अपसेट यार इशू, तुझे इस तरह इतना उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज उदास मत हो। इप्सिता नंदिनी की तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम उदास नहीं हो रहे, हम तो बस ये फोटोज देख रहे थे, कोई बात नहीं, चलो अच्छा हम अपने कल के एग्जाम पर फोकस करते हैं। इप्सिता की बात सुनकर नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो दोनों अपनी अपनी बुक्स खोलकर अपने एग्जाम की प्रेपरेशन में लग गई। देखते ही देखते शाम हो गई।
नंदिनी ने इप्सिता से कहा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा किया, देख हम दोनों ने साथ में पढ़ा तो कितना सारा सिलेबस हमने एक साथ कर लिया है। इप्सिता ने कहा, हाँ सच बोल रही हो, हमने भी तेरे यहाँ पर होने की वजह से काफ़ी सारा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मेरी प्रेपरेशन तो वैसे भी थी लेकिन अभी सब अच्छे से रिवाइज हो गया। इप्सिता बोल ही रही थी कि नंदिनी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान 8 बज गए थे किशु, बातों बातों में और ये सारे नोट्स बनाने में कितना टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला, अच्छा मैं चलती हूँ। इप्सिता ने कहा, यार इतना लेट हो गया है, अब कम से कम डिनर करके जाना। नंदिनी ने कहा, हाँ सोच तो मैं भी यही रही थी कि थोड़ी देर रुक जाऊं और जीजू आ जाएं तो उनसे मिलकर जाऊं, लेकिन शायद आज मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी और पता नहीं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी, इसलिए अभी मैं चलती हूं और डिनर तो बाद में होता रहेगा, क्योंकि अभी अगर मैंने और लेट किया तो फिर जानती है ना तू हॉस्टल के रूल्स और फिर वार्डन मैम गुस्सा करेंगी। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने नंदिनी को रोका नहीं, वो नंदिनी के साथ ही कमरे से बाहर निकली। उसने ड्राइवर से नंदिनी को हॉस्टल तक छोड़कर आने के लिए कहा। जैसे ही नंदिनी कार में बैठी, इप्सिता ने उसे बाय किया और नंदिनी की कार विला से बाहर निकली। जैसे ही नंदिनी की कार विला से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से अभिमन्यु की कार विला के अंदर आई। इप्सिता अभिमन्यु को देखकर वहीं रुक गई, उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो ऑटोमेटिक ही गायब हो गई। अभिमन्यु की कार गेट पर आकर रुकी और अभिमन्यु कार से उतरते ही इप्सिता की तरफ देखने लगा। वो अंदर आया और इप्सिता से बोला, क्या बात है इप्सिता, आप यहाँ गेट के पास क्यों खड़ी हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु से नजरें नहीं मिलाई और वो गेट से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, वो हम नंदिनी को छोड़ने के लिए यहाँ आई थी। अभिमन्यु ने जैसे ये बात सुनी उसने थोड़ी हैरानी से कहा, नंदिनी यहाँ आई थी? आपने हमें बताया नहीं कि आप नंदिनी को बुलाने वाली थी। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर बड़े ही उखड़ते लहजे में उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बताते हम आपसे, हमारे उठने से पहले ही तो आप यहाँ से चले गए थे और वैसे भी हम घर में अकेले बोर हो रहे थे इसलिए हमने नंदिनी को बुलाया, पूरे घर में हम अकेले थे तो क्या ही करते, इसलिए नंदिनी को बुलाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसके अलावा हम और किसे जानते हैं यहाँ पर, एक वही तो है जिससे हम खुलकर सारी बातें कर सकते हैं। इतना बोलकर इप्सिता चुपचाप अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु इप्सिता की बातें सुनकर समझ गया कि इप्सिता उसे ताना मार रही हैं। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोल पाता, इप्सिता अपने रूम में चली गई। क्रमशः क्या अभिमन्यु समझ पाएगा इप्सिता की नाराजगी की वजह और क्या इप्सिता ने पूरी तरह से भुला दिया है अपने सपने को और अपनी फोटोज देखकर उसे थोड़ा अफसोस तो हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या अभिमन्यु के साथ शादी की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हो गई है और पूरी तरह से अपने सपनों को भूल जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को, क्या करना चाहिए हमारी इप्सिता को?